आशिका इशिका से मिलने हॉस्पिटल पहुंची थी। इशिका से मिलने के बाद आशिका ब्रेकफास्ट करने हॉस्पिटल के कैंटीन एरिया में गई, जहां वो गलती से अपनी सौतेली बहन सेलिना से टकरा गई थी। आशिका ने खुद को छुपाने के लिए लड़कों की तरह कपड़े पहने थे, साथ ही उसने मास्क और कैप भी लगा रखा था। उसके इस लुक की वजह से सेलिना ने उसे लड़का समझ लिया। उसने वहां ये बोलकर अच्छा खासा तमाशा लगा दिया कि वो उसे छेड़ रहा है। उसी समय पर अभिमान अभिमन्यु के साथ अस्पताल के कैंटीन में मौजूद था। शोर सुनकर अभिमान वहां गया तो उसने आशिका को तुरंत पहचान लिया था। आशिका ने वही कपड़े पहने थे जो वो पहली बार एआर एम्पायर्स में पहनकर आई थी। आशिका अब तक चुप थी और कुछ बोली नहीं थी। ये देखकर अभिमान को लगा कि वो सेलिना से छुपने की कोशिश कर रही है। आशिका का साथ देते हुए अभिमान ने यही कहा कि वो उसके साथ है। अभिमान जैसे तैसे करके आशिका को वहां से ले गया था और इस वक्त आशिका उसके साथ उसकी गाड़ी में थी। अभिमान आशिका से सच जानने की जिद कर रहा था कि आखिर वो सेलिना से छुप क्यों रही थी। आशिका ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी। अभिमान गाड़ी ड्राइव करके आशिका को उसके फ्लैट की तरफ ही लेकर जा रहा था। ड्राइव करते हुए अभिमान ने एक नज़र आशिका की तरफ देखा जो खोई हुई लग रही थी। उसने अब अपना मास्क और कैप निकाल दिया था। अभिमान ने वापस सामने की तरफ देखा और मन ही मन कहा, पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। हमारा तो दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें सेफ रखना चाहता हूँ। तुम आखिर मेरे सवालों के जवाब दे क्यों नहीं देती? मैं तुम्हारी हेल्प ही करने वाला हूँ। अभिमान को मन ही मन गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि आशिका बिल्कुल चुप बैठी हुई थी। बिल्कुल भी ट्रैफिक ना होने के बावजूद वो जानबूझकर बार बार हॉर्न बजाया जा रहा था ताकि आशिका का ध्यान उसकी तरफ जाए। उसके बार बार हॉर्न बजाने पर इरिटेट होकर आशिका ने कहा, मिस्टर राजवंश, इस तरह नॉइस पोल्यूशन करना ज़रूरी नहीं होता। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है सबको तुम्हारी तरह बिल्कुल चुप रहना चाहिए ताकि नॉइस पोल्यूशन ना हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बात क्यों नहीं बताती कि उससे क्यों छुप रही थी? अभिमान ने चिढ़कर जवाब दिया, और आपकी क्या प्रॉब्लम है? आपको नहीं लगता कि आप अचानक ही मेरी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हैं, जबकि हमारे बीच काम करते वक्त यही तय हुआ था कि हम दोनों एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे? आप ऐसा करके कॉन्ट्रैक्ट की एक इंपॉर्टेंट क्लॉज को तोड़ रहे हैं मिस्टर राजवंश। कहीं ऐसा ना हो कि मैं काम करने से मना कर दूँ, आशिका ने बिना किसी भाव के जवाब दिया। आशिका को लगा कि उसके काम करने से मना करने की धमकी देने के बाद अभिमान कुछ भी जानने की जिद नहीं करेगा। जैसे ही आशिका की बात खत्म हुई, अभिमान ने अचानक से ब्रेक लगाई। गाड़ी की स्पीड काफ़ी तेज़ होने की वजह से गाड़ी एक झटके में रुक गई थी। उसके इस हरकत पर आशिका ने अभिमान की तरफ घूर कर देखा। अभिमान ने भी ड्राइव करना छोड़कर आशिका की आंखों में देखा और सख्त आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे धमकी देने से मैं डर जाऊंगा? कॉन्ट्रैक्ट में और भी क्लोज होती हैं, तुम मेरा काम बीच में नहीं छोड़ सकती हो। ऐसा करने से तुम्हें अच्छा खासा कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। आपको ये लगता है कि मुझे पैसों की कमी है? आशिका ने सार्केस्टिकली मुस्कुराते हुए कहा। मजाक मत बनाओ, डार्क वेब के नंबर वन हैकर हो तो जरूर अमीर भी होगी। तुमने बहुत से ऐसे लोगों के लिए भी काम किया होगा जो तुम्हें हर तरीके से प्रोटेक्ट करने में केपेबल हैं। फिर तुम इस तरह छुपकर क्यों भाग रही हो? कहीं तुमने कोई क्राइम तो नहीं किया? अभिमान ने आंखें बड़ी करके पूछा। उसकी बात सुनकर आशिका का मन किया कि वो जोर से हंस पड़े। आशिका ने सिर हिलाया और कहा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये मेरा पहला इलीगल काम है जो आपकी वजह से मुझे करना पड़ रहा है। तो फिर किससे डर रही हो? कहीं तुमने किसी माफिया से तो पंगा नहीं ले लिया? वो लड़की तो मुझे किसी भी एंगल से माफिया से कनेक्ट नहीं लग रही थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो प्ले गर्ल है। उसे बस अपने लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए कोई अमीर इंसान चाहिए, फिर उसे छुपने की क्या जरूरत है? अभिमान अलग अलग अंदाजे लगा रहा था ताकि आशिका किसी पर तो हाँ कहे। आशिका ने नामे सिर हिलाया। इससे पहले कि अभिमान उससे वापस पूछता, आशिका ने उसे सामने की तरफ इशारा करके कहा, गाड़ी ड्राइव कीजिए मिस्टर राजवंश, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाए। अभिमान ने इरिटेट होकर गहरी सांस ली और फिर गाड़ी फिर से स्टार्ट कर ली। उसने मन ही मन यही सोचा था कि जब तक आशिका उसे सच नहीं बता देती, वो उसे घर नहीं लेकर जाएगा। आशिका ने देखा अचानक अभिमान ने यू टर्न लिया और गाड़ी को यूं ही इधर से उधर सड़कों पर घुमाने लगा। आपका पता नहीं मिस्टर राजवंश, लेकिन मेरे पास फ्री टाइम नहीं है, मुझे आपका प्रोजेक्ट देखना है। मैं जितना जल्दी घर पहुंचूंगी उसी में हम दोनों की भलाई है, आशिका ने उसे आराम से समझाने की कोशिश की। मुझे कोई जल्दी नहीं है ऐश, जब तक गाड़ी का पेट्रोल खत्म नहीं हो जाता या तुम सच नहीं बता देती, तब तक मैं ऐसे ही घुमाता रहूंगा। रही बात प्रोजेक्ट पूरा करने की, तो तुम उसके लिए पूरी उम्र भी ले सकती हो। मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, अभिमान ने हल्का हंसकर कहा। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि बातों ही बातों में उसने क्या कह दिया था, अभिमान ने कसकर एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद कर लिया था। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे। जो किस वजह से आए थे वो आशिका समझ गई थी। आशिका ने बेपरवाही से सिर हिलाया और कहा, डोंट वरी, मैंने आपकी बातों को सीरियसली नहीं लिया है, और ना तो मेरे पास इतना टाइम है और ना ही आपके पास जो मैं अपनी पूरी उम्र आपके नाम कर सकूं मिस्टर राजवंश। आशिका ने गहरी सांस ली और फिर कुछ पल रुक कर कहा, वो लड़की मेरी सौतेली बहन है। जैसा कि उसने बताया कि वो यहाँ घूमने के लिए आई है, और मैं उसे इसलिए छुप रही थी क्योंकि मुझे उसके सामने नहीं जाना। आशिका ने अभिमान को आधा सच बताया था। वो उसे वो नहीं बता सकती थी कि वो स्काई की वजह से छुप रही है,
लेकिन मैंने तुम्हारी आंखों में एक डर देखा था, अभिमान बोला। हाँ, एक पल के लिए मैं घबरा गई थी कि वो मुझे पहचान न ले। एक्चुअली मेरी फैमिली को नहीं पता कि मैं क्या करती हूँ या फिर मैं फिलहाल मुंबई आई हुई हूँ। अब तो आपको सब पता चल गया होगा, और प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आगे से मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ मत पूछिएगा, आशिका ने जवाब दिया और अपनी तरफ से उस टॉपिक को वहीं क्लोज कर दिया था। अभिमान को कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि आशिका उसे आधा अधूरा सच बता रही है, पर फिर भी उसने आगे फोर्स नहीं किया। उसने आशिका को अभिमन्यु के फ्लैट पर छोड़ा और फिर वहां से चला गया था। घर पर आते ही आशिका जल्दी से दौड़कर अपने कमरे में गई और दूसरे मोबाइल से उसने तुरंत रिहान को कॉल किया। रिहान, सेलिना और तृप्ति हिल यहाँ मुंबई पहुंच चुके हैं। जाहिर सी बात है कि वो मुझे ढूंढ रहे हैं। उनके मैसेज ट्रैक करके पता करो कि वो कब तक यहाँ रुकने वाले हैं, आशिका ने घबराई आवाज में कहा। इसमें पूछने जैसा कुछ नहीं है ऐश, जब तक तुम उन्हें नहीं मिल जाती वो वहीं पर रहेंगे। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम वहाँ क्या कर रही हो, हमने यही डिसाइड किया था कि तुम किसी दूसरी कंट्री जा रही हो, रिहान ने गुस्से में जवाब दिया। आशिका बिल्कुल शांत हो गई थी, उसे लगा था कि थोड़े दिनों में ये मामला शांत हो जाएगा, लेकिन सेलिना और तृप्ति दोनों का स्काई के साथ मिलकर उसे ढूंढना उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता था। आशिका ने कुछ पल रुककर कहा, मैं यहाँ से नहीं जा सकती हूँ, तुम ऐसा करो कि मेरी लोकेशन ऑन कर दो और कैसे भी करके उन्हें इस बात के लिए कन्विंस कर दो कि मैं इस वक्त एले में ही हूँ, वो वापस वहाँ चले जाएंगे।
ठीक है, मैं देखता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें यही समझाऊंगा कि तुम्हारा वहाँ रुकना सही नहीं है, रिहान ने उसे समझाना चाहा, पर आशिका को ना जाने क्यों वहाँ उनके साथ खतरों में रहकर भी सेफ महसूस हो रहा था। जिस तरह से आज अभिमान ने अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए बीच में आकर उसे बचाया था, उसे ना जाने क्यों आशिका को यही लग रहा था कि वो अभिमान के आसपास रहेगी तो सुरक्षित होगी। रिहान से बात करके आशिका ने कॉल कट कर दिया। वो अभिमान के बारे में सोच रही थी। अभिमान बार बार उसके बारे में जानने की जिद कर रहा था, हालांकि उसका इरादा कहीं से भी बुरा नज़र नहीं आ रहा था। बेहतर यही होगा कि मैं खुद को इस घर में बंद करके रखूं। ऊपर से जिस तरह से अभिमान मेरा सच जानने की कोशिश कर रहा है, कहीं वो सेलिना के पास ना पहुंच जाए। वैसे भी सेलिना उसमें इंटरेस्ट दिखा रही थी। ओह गॉड, ये सारी मुसीबतें एक साथ ही आनी जरूरी थी क्या? मेरी ही गलती है जो मैं उस औरत पर यकीन करके उसके फैमिली डिनर पर पहुंच गई थी, जबकि ईशिका ने मुझे समझाया था कि मुझे उसका यकीन नहीं करना चाहिए। सारी मुसीबतें वहीं से शुरू हुई हैं, आशिका ने दांत पीसते हुए कहा। आशिका को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि तृप्ति की सच्चाई जानने के बावजूद उसने क्यों उस पर यकीन करके एक मौका दिया। वहीं दूसरी तरफ, जैसा कि डॉक्टर ने कहा था, रात के 8 बजे के करीब वो ईशिका की हेल्थ को मॉनिटर कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने ईशिका में मूवमेंट नोटिस की थी। पूरे 20 घंटे बाद ईशिका को होश आया था। उसके कुछ शुरुआती चेकअप और रिपोर्ट देखने के बाद रात के लगभग 11 बजे के करीब डॉक्टर आईसीयू से बाहर निकले और अभिमन्यु से कहा, आप उनसे मिल सकते हैं मिस्टर राजवंश, हालांकि हमने उनसे कोई बात नहीं की है, वो बिल्कुल शांत है, मतलब साफ है कि उन्होंने अपनी यादों को नहीं खोया है। डॉक्टर के बताने पर अभिमन्यु ने राहत की सांस ली। आज का दिन वाकई उसके लिए अच्छा था। सुबह उसने ईशिका और अपने बच्चे के ठीक होने की खबर सुनी तो अब ईशिका के होश में आने की। अभिमन्यु ने केशव और राधिका की तरफ देखा। राधिका ने उसका हाथ सहलाकर कहा, तुम पहले उससे मिलने के लिए जाओ, हम बाद में आ जाएंगे। अभिमन्यु ने उनकी बात पर हामी भरी और कमरे के अंदर आ गया था। उसके चेहरे पर वही न दिखने वाली हल्की सुकून भरी मुस्कुराहट थी। खुशकिस्मती से ईशिका की ज्यादा चोटें नहीं आई थीं। डॉक्टर ने बताया था कि उसके इंटरनल इंजरी आई है, वो भी बड़ी नहीं थी। तुमने मुझे एक बार फिर से डरा दिया, अंदर आते हुए अभिमन्यु बोला। ये तीसरी बार है मिसेज राजवंश जब मैंने इस तरह अचानक तुम्हारे एक्सीडेंट की न्यूज़ सुनी है, और आई टेल यू, ये आखिरी बार होना चाहिए। बार बार मैं खुद को संभाल नहीं सकता हूँ, तुम सोच भी नहीं सकती कि मुझे ये सब सुनने के बाद कैसा लगता है। अभिमन्यु बोले जा रहा था, लेकिन ईशिका उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। अभिमन्यु ने महसूस किया कि वो उलझन भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स क्लियर होने के बारे में कहा था, लेकिन फिर भी अभिमन्यु को थोड़ा डाउट हो रहा था। उसने कंफर्म करने के लिए पूछा, तुम जानती हो ना तुम कौन हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था? ईशिका ने हाँ में सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, मुझे एक्सीडेंट का कुछ याद नहीं आ रहा है, पर मैं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं ईशिका सिंघानिया हूँ। जैसे ही ईशिका ने अपना नाम बताया, अभिमन्यु ने गहरी सांस लेकर छोड़ी। वो बोला, देखा, तुमने फिर से मुझे डरा दिया। अपनी बात खत्म करके अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन ईशिका ने तुरंत उसे दूर कर दिया था। अभिमन्यु हैरानी भरी निगाहों से ईशिका की तरफ देखने लगा। इससे पहले कि अभिमन्यु कुछ समझ पाता, ईशिका ने कहा, डरा तो आप मुझे रहे हैं, आप कौन हैं मिस्टर? मैं आपको नहीं जानती हूँ, और प्लीज़ ऐसी बात मत कीजिए जैसे हमारे बीच कोई रिश्ता हो। मुझे इस अकेले कमरे में आपसे डर लग रहा है, आप प्लीज़ उसे कॉल कर दीजिए। उसे किसे? अभिमन्यु ने चौंकते हुए पूछा। इस वक्त उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। डॉक्टर ने कहा था कि वो अपनी यादों को भूल सकती है, लेकिन ईशिका को सब याद था, लेकिन वो अभिमन्यु को क्यों नहीं पहचान रही थी? ईशिका कुछ पल रुकी और बोली, नक्श राजवंश, आप नक्श को कॉल कीजिए, वो आ जाएगा।
नक्ष का नाम सुनकर अभिमन्यु को झटका सा लगा। वो जानता था कि एक वक्त में नक्ष शिखा के करीब था, पर ऐसे लम्हे में नक्ष का नाम लेगी इसकी अभिमन्यु ने उम्मीद भी नहीं की थी।